नमस्कार भारत, तारीख 3 सितंबर, दिन सोमवार, मैं हूं वात्सल्य राय। लीबिया सरकार ने राजधानी त्रिपोली में लागू किया आपातकाल, हिंसा के बीच जेल से 400 कैदी फरार।
The fighting is still going on around parts of Tripoli.
क्या तेलंगाना में वक्त से पहले होंगे विधानसभा चुनाव, अटकलें जारी, लेकिन मुख्यमंत्री ने नहीं खोले पत्ते। और खास रिपोर्ट पाकिस्तानी शहर कराची के उस रेस्टोरेंट से जहां पकवानों में आती है गुजरात की खुशबू।
आज इस जो रेस्टोरेंट में आया, मेरे लिए सारी चीजें सरप्राइज थी जो उन्होंने रूटीन में की और मैंने देखी।
होगी पाकिस्तान डायरी और खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिनेश उप्रेती से। लीबिया में पुलिस का कहना है कि राजधानी त्रिपोली में विद्रोही गुटों की हिंसा के बीच लगभग 400 कैदी फरार हो गए हैं। कैदियों ने आइन जारा जेल के दरवाजे तोड़ दिए और फरार हो गए। जेल के सुरक्षाकर्मी अपनी जान बचाते हुए भाग खड़े हुए। राजधानी में विद्रोही गुटों के बीच चल रहे घमासान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार ने त्रिपोली में आपातकाल घोषित कर दिया है। अमेरिका में डेमोक्रेट सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नामित ब्रेट कैवनॉग के दस्तावेजों को जारी नहीं करने पर व्हाइट हाउस की आलोचना की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैवनॉग को सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नामित किया है। कैवनॉग के नामांकन पर सीनेट की मंजूरी प्रक्रिया कल से शुरू होनी है। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के वकील चाहते हैं कि इन दस्तावेजों को संवैधानिक विशेषाधिकार के तहत सुरक्षित रखा जाना चाहिए। डेमोक्रेटिक सांसद एमी कोबुचर ने कहा है कि सीनेट कमेटी को इन दस्तावेजों को दिखाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। कोबुचर ने कहा,
This is not normal. You have a nominee with excellent credentials with his family.
ये सामान्य नहीं है। आपने बेहतरीन प्रमाण पत्रों वाले व्यक्ति को नामित किया है, वहाँ कैमरा होंगे और सांसद भी सवाल जवाब करेंगे, लेकिन ये सामान्य नहीं है क्योंकि हम उन हजारों दस्तावेजों को देख नहीं पाएंगे। ये थे डेमोक्रेट सांसद एमी कोबुचर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रेक्सिट पर यूरोपियन यूनियन के मुख्य वार्ताकार माइकल बर्नियर का ने कहा है कि उन्हें ब्रिटानी सरकार के उस प्रस्ताव पर एतराज है जिसमें ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय यूनियन के साथ भविष्य के रिश्तों की योजनाओं के बारे में बताया गया है। ब्रिटानी कैबिनेट ने जुलाई में एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें व्यापार में यूरोपियन यूनियन के साथ साझा नियम तय करने की बात थी। बर्नियर ने कहा कि ब्रिटिश सरकार की योजना से यूरोपीय परियोजनाएं और यूरोपियन यूनियन का एकल बाजार कमजोर होगा। इराक के दक्षिणी शहर बसरा में जुटे हजारों प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य राजमार्ग को जाम कर दिया जिससे इलाके में तनाव है। ये लोग नौकरियों में कमी, खराब सार्वजनिक व्यवस्था और बिजली पानी की कमी से नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी बगदाद से बसरा की ओर जाने वाली और ईरान की सीमा तक जाने वाली सड़क को बंद कर दिया है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि ये प्रशासन बेकसूर प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा, ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोग अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। ये थे बसरा में प्रदर्शन कर रहे एक व्यक्ति के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 9वें दिन कल अपनी वसीयत जारी की। हार्दिक पटेल अपने समुदाय के लिए आरक्षण और किसानों के कर्ज माफी की मांग को लेकर अनशन पर हैं। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के प्रवक्ता मनोज पनारा ने कहा कि हार्दिक की तबीयत लगातार बिगड़ रही है और डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। हालांकि हार्दिक ने खून की जांच कराने से इनकार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने चेतावनी दी है कि भूमध्य सागर पार कर यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे शरणार्थियों के जीवन को पहले से कहीं अधिक खतरा है। एजेंसी ने कहा है कि ऐसी कोशिश करने वाले शरणार्थियों में से 18 में से एक व्यक्ति की मौत हो रही है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। नमस्कार भारत की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में विद्रोही गुटों के बीच हिंसक संघर्ष जारी है। पुलिस के मुताबिक हिंसा के दौरान राजधानी की एक जेल से करीब 400 कैदी फरार हो गए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक लीबिया की सरकार ने राजधानी में आपातकाल की घोषणा कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता दिनेश उप्रेती।
लीबिया की राजधानी त्रिपोली में विद्रोही गुटों में जारी हिंसक संघर्ष के बीच लगभग 400 कैदी फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक कैदियों ने आइन जारा जेल के दरवाजे तोड़ दिए और फरार हो गए। जेल के सुरक्षाकर्मी अपनी जान बचाते हुए भाग खड़े हुए। राजधानी में विद्रोही गुटों के बीच चल रहे घमासान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार ने वहां आपातकाल घोषित कर दिया है। आइन जारा जेल में रखे गए अधिकतर कैदियों को लीबिया के पूर्व नेता मुअम्मर गद्दाफी का समर्थक माना जाता है। साल 2011 में गद्दाफी की सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह में इन्हें लोगों की हत्या करने का दोषी पाया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रविवार को राजधानी त्रिपोली के रिहायशी इलाके में हुए एक रॉकेट हमले में दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। हिंसा के इस दौर में हजारों की संख्या में लोग अपने घरों से पलायन कर गए हैं और जो घरों में हैं उनके बाहर निकलने पर पाबंदियां लगी हैं। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता कह रहे थे कि सुरक्षा कारणों से कहीं आने जाने पर पाबंदी लगी है। त्रिपोली के आसपास लड़ाई अब भी जारी है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वे बाहर न निकलें क्योंकि उनके बाहर निकलने में खतरा है। लीबिया में आम तौर पर संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार सत्ता में रहती है, लेकिन देश के अधिकांश हिस्से पर चरमपंथी गुटों का नियंत्रण है। त्रिपोली में पिछले हफ्ते हिंसा तब शुरू हुई थी जब चरमपंथियों ने त्रिपोली के दक्षिणी इलाके में हमला किया। इसके बाद उनका स्थानीय सरकार समर्थित चरमपंथी गुटों से संघर्ष चल रहा है। लीबिया की राष्ट्रीय साझा सरकार यानी GNA ने हिंसक झड़पों को देश की राजनीतिक स्थिरता को खत्म करने का प्रयास बताया है और कहा है कि वो इन झड़पों पर चुप नहीं रह सकती क्योंकि ये राजधानी की सुरक्षा और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा है। लीबिया में पिछले कुछ सालों से हिंसा का लंबा दौर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मचे घमासान ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को चिंता में डाल दिया है।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिनेश उप्रेती। अगली खबर भारत के राज्य तेलंगाना से। क्या तेलंगाना में वक्त से पहले विधानसभा चुनाव होंगे? राज्य में बीते कुछ समय से इस तरह की अटकलें जारी हैं। मुख्यमंत्री केसी राव ने कल हैदराबाद के पास एक बड़ी रैली की, लेकिन उन्होंने इस सवाल से पर्दा नहीं उठाया। मुख्यमंत्री ने यह संकेत जरूर दिया कि साल 2019 के आम चुनाव में उनकी पार्टी न तो बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी और न ही कांग्रेस की अगुवाई वाले मोर्चे में शामिल होगी। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
नेताओं के भाषण कई बार उनकी भविष्यों की योजनाओं और मंसूबों की जानकारी दे देते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कल शाम को जिस तरह अपने समर्थकों को संबोधित किया, उससे इतना तो स्पष्ट हो गया कि वो जल्द से जल्द विधानसभा के चुनाव करवाना चाहते हैं। पिछले थोड़े दिनों से इस तरह की खबरें हैदराबाद के राजनीतिक हलकों में सुनने को मिले ही रही हैं। असलियत में तेलंगाना विधानसभा के चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव के साथ ही होना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि चंद्रशेखर राव जल्दी में हैं। मीडिया में अटकलबाजी चल रही है कि विधानसभा रद्द कर दी जाएगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदस्यों ने हमें अधिकार दिया है निर्णय लेने के लिए, और हम आपको जरूर निर्णय लेने के बाद बताएंगे। ये थे के चंद्रशेखर राव के शब्द। कुछ हफ्तों से ये भी मिलने को मिल रहा था कि चंद्रशेखर राव एक तरफ कांग्रेस की आलोचना करते आ रहे थे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी दो बार मुलाकात हुई थी। इससे राजनीतिक हलकों में ये बात फैली थी कि वो शायद बीजेपी के साथ किसी तरह का समझौता 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर ही लेंगे। लेकिन कल के भाषण में चंद्रशेखर राव ने एक अलग ही बात कह दी। उन्होंने कहा, तेलंगाना में भी आत्मसम्मान के साथ सरकार में बने रहना चाहते हैं, जैसे तमिलनाडु में भी दिल्ली के पक्षों के नेतृत्व में शासन नहीं होता है। ये थे चंद्रशेखर राव के शब्द। दरअसल इस बयान का इशारा रैली से पहले ही मुख्यमंत्री के बेटे और मंत्री केटी रामराव ने दिया था। उन्होंने विश्वास जताया था कि केंद्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में एक फेडरल फ्रंट की सरकार सत्ता में आएगी। तो चंद्रशेखर राव क्या करना चाह रहे हैं इस तरह का बयान देते हुए? हमने ये सवाल राजनीतिक विश्लेषक टंकशाला अशोक से पूछा। उन्होंने कहा, उनका कांग्रेस के साथ जाने का सवाल तो उठा ही नहीं है, और वो बीजेपी के साथ भी नहीं जाएंगे क्योंकि चुनावी तौर से देखें तो बीजेपी बहुत कमजोर पक्ष है तेलंगाना में। लेकिन उनकी कोशिश ये भी है कि वो विधानसभा के चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के साथ करवाना चाह रहे हैं। ये थे टंकशाला अशोक के शब्द। दरअसल विधानसभा के चुनाव पहले करवाने से चंद्रशेखर राव की कोशिश ये है कि वो तेलंगाना राष्ट्र समिति को लोकसभा चुनाव में आगे रखना चाह रहे हैं। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
आगे बढ़ते हैं। भारत के निवर्तमान लॉ कमीशन यानी विधि आयोग का 3 साल का कार्यकाल बीते हफ्ते खत्म हो गया। अपनी आखिरी सिफारिश में आयोग ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की फिलहाल जरूरत नहीं है। आयोग की सिफारिश को लेकर हमारे साथी मोहम्मद शाहिद ने नेलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कुलपति डॉक्टर फैजान मुस्तफा से बात की।
मेरा हमेशा से ये लिखना रहा है कि हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में जिसको डाइवर्सिटी इंडिया को डिफाइन करती है, यूनिटी नहीं डिफाइन करती कि इंडिया में अनेकता है, तो इतनी बड़े डाइवर्स कंट्री में यूनिफॉर्मिटी के एक लॉ बनाया जाए, ये अपने आप में कोई बड़ा आपका मकसद, बल्कि मकसद ये होना चाहिए कि क्या जो लॉ है वो जस्ट लॉ है, जेंडर जस्ट लॉ है। अगर हमारा मकसद लॉ में रिफॉर्म करना है, तो अगर हम एक झटके में यकफा सिविल कोर्ट का नाम लेके कोई बात करेंगे तो उस डिबेट को फंडामेंटलिस्ट जो हैं वो हाईजैक कर लेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको राइटिस्ट फोर्सेस जो हैं वो इस तरह से इस्तेमाल करती हैं कि जैसे इससे अकलियतों को जो है कि भाई आप बड़ा कोई जुल्म कर रहे हैं, अपना डिफरेंट पर्सनल लॉ फॉलो कर रहे हैं और अब आपको देख लेंगे, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगी। तो इसके बजाय अगर हम पीस मील टुकड़ों में रिफॉर्म करें, छोटे छोटे रिफॉर्म करें कि कभी मैरिज की एज के बारे में रिफॉर्म कर दें, कभी डिवोर्स के बारे में कर दें, कभी मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में कर दें, तो उससे इतना अपोजिशन नहीं हो पाएगी, सांप का सांप मर जाएगा, लाठी टूटेगी नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉ कमीशन ने मुल्क की डाइवर्सिटी को देखते हुए ये एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मकसद और गोल है वो बहुत दूर है।
देखा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीतियां होती रही हैं, तो क्या ये उन राजनीतिक दलों के लिए धक्का है जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती हैं?
हिंदुस्तान की दस्तूर साज कमेटी ने जब यकसा सिविल कोड को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा, तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये कि पार्लियामेंट इस पर लॉ बना सकती है और स्टेट असेंबली बना सकती है। आज जब आपके पास 28-29 स्टेट्स हैं तो इसका मतलब 29 लॉ अलग हो सकते हैं पर्सनल लॉ के। हिंदू लॉ जिसके बारे में हम ये समझते हैं कि वो पूरे मुल्क में एक है, वो भी एक नहीं। क्रिमिनल लॉ जिसके बारे में हम ये समझते हैं कि इंडियन पीनल कोड पूरे एक मुल्क में है एक, वो भी एक नहीं है। देखिए अभी पंजाब में जो है वो ब्लैस्फेमी के लॉ में तब्दीली करी, तो वो जितने लोग होमोजिनिटी की बात कर रहे थे या यकसा सिविल कोड पूरे एक मुल्क पे लागू हो जाएगी, उनको ये भी नहीं मालूम कि भाई क्रिमिनल लॉ भी एक नहीं है। बार बार ये कहते थे भाई क्रिमिनल लॉ तो एक है, क्रिमिनल लॉ मान लिया तो ये, अरे भाई क्रिमिनल लॉ जो है वो हुकूमत का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन क्रिमिनल लॉ भी एक नहीं है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सजाएं हैं। इसी तरह एक लॉ होना अपने आप में कोई दस्तूर का मकसद नहीं है। तो उसमें मैं समझता हूं कि जिन्होंने ये मुहिम चलाई थी उनको लॉ कमीशन की इस रिपोर्ट से थोड़ा बहुत जरूर एक झटका
और सेटबैक हुआ है।
ये थे फैजान मुस्तफा और अब आज के अखबारों की बात दिनेश उप्रेती के साथ।
जी वासल जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की किताब मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड के विमोचन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को हिंदुस्तान टाइम्स समेत कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। खबर के मुताबिक पीएम मोदी ने व्यवस्था में अनुशासन के महत्व को प्राथमिक बताते हुए कहा कि इन दिनों अनुशासन को निरंकुशता करार दिया जाता है।
जी
इंडियन एक्सप्रेस ने इसी खबर में उपराष्ट्रपति के बयान को लीड बनाया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि सांसदों और विधायकों के लिए आचार संहिता बनाए जाने की जरूरत है।
जी इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे और उन्होंने एक शेर भी पढ़ा था, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं।
तेलंगाना में विधानसभा चुनाव निर्धारित समय से पहले होने की संभावना की खबर भी कई अखबारों में है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कल कहा कि विधानसभा भंग करने के मुद्दे पर वो जल्द ही कोई फैसला लेंगे।
कांग्रेस ने भी इसके लिए कोई काउंटर प्लान बनाया हुआ है, अखबारों ने ये भी रिपोर्ट की है।
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुणे पुलिस को 5 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय मिला है। ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की। पुणे पुलिस ने 6 जून को इन्हें माओवादियों से कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने ताजा गिरफ्तारियों का हवाला देते हुए कोर्ट से आरोप पत्र के लिए समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। बड़े कारोबारियों के लोन डिफॉल्ट की खबरों के बाद अब छोटे व्यापारियों ने लोन डिफॉल्ट की खबरें भी सुर्खियां बनने लगी हैं।
जी
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एक साल में ऐसे कर्ज बढ़कर 2 गुने हो गए हैं। मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 86 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गई हैं। इस खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर छापा है। अखबार ने पेट्रोलियम कंपनी के सूत्रों के हवाले से बताया है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि तलाक के बाद पूर्व पति पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा नहीं किया जा सकता। साउथहैम्पटन में 4थे क्रिकेट टेस्ट में भारत की इंग्लैंड के हाथों हार की खबर भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके साथ ही सीरीज में वापसी का टीम इंडिया का सपना भी चकनाचूर हो गया है।
जी बहुत शुक्रिया दिनेश जी।
खुद खुशियां दे रहे तुरगे प्यो ते पुत कुड़े।
लड़की की शादी आ गई तो 2 साल में कोई फसल हुई नहीं, ये कर्जा फेरते फेरते शादी रुक गई।
भारत में किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन वही अन्नदाता आत्महत्या के लिए आज क्यों विवश है? भारत में बढ़ते कृषि संकट पर बीबीसी की विशेष सीरीज में सुनिए पंजाब, विदर्भ और मराठवाड़ा से जमीनी रिपोर्ट्स, सोमवार 3 सितंबर से दिन भर में।
आज ही सोमवार है और आज आपको इंतजार होता है पाकिस्तान डायरी का भी। अपनी साप्ताहिक पेशकश में वस्तुल्ला खान अमेरिका के उस फैसले पर चुटकी ले रहे हैं जिसमें पाकिस्तान को दी जाने वाली $30 करोड़ की मदद रोक दी गई है।
अब्दुल्ला पनवाड़ी के बारे में आपको मैं शायद पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ कि मोहल्ले में वही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अखबार पहले खुद चाटता है और फिर टिप्पणी भी करता है और फिर पूरी टिप्पणी मेरे कानों में पल्ली लगा के उंडेल देता है। कल से अब्दुल्ला परवाड़ी फिर गुस्से में है। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के वो $30 करोड़ भी रोक लिए जो उस पगार में शामिल हैं जो अमेरिका पाकिस्तान को 9/11 के बाद से आतंकवाद से निपटारे में अपनी सहायता के नाम पर देता आ रहा है। भाई साहब, ऐसे तो ओम पुरी भी बॉलीवुड फिल्मों में अपने खेत मजदूरों और किसानों के साथ नहीं करता था। कद्दू की सुपर पावर है ये अमेरिका। भाई जी, इतनी छिचोरी सुपर पावर आपने कभी देखी है जो उस समय पैसे रोके जब हमें पाई पाई की ज़रूरत हो? $30 करोड़, क्या औकात है $30 करोड़ की? पर अमेरिका जैसा आदमी घटियापन पे उतर आए तो $30 भी ज़्यादा दिखाने के लिए बहुत है। और भाई जी, ये जो ट्रंप बार बार जताता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पिछले 15 वर्ष में $33 अरब दिए मगर पाकिस्तान ने हमें बेवकूफ़ बनाया, ये बताओ भाई साहब के जो देश $30 करोड़ की पघार बदमाशी से रोक ले उसने हमें $33 अरब कब दिए के पता ही ना चला? अच्छा चल दिए तूने $33,000 करोड़, अब तू हमसे वसूल करके दिखा दे। अरे हम वो हैं जो नहाते समय पुराने साबुन के आखिरी टुकड़े को नए साबुन की बट्टी से जोड़ के इसलिए शरीर पे मल लेते हैं कि कहीं ज़ाया ना हो जाए। शैम्पू की खाली बोतल में पानी डाल के आखिरी झाग तक निकाल लेते हैं। स्टील के 100 रुपए के गिलास को रेलवे स्टेशन के कूलर से 500 रुपए की जंजीर से इसलिए बांध देते हैं कि कोई चुरा ना ले। तू हमसे निकलवाएगा $33 अरब? भाई साहब, ये जो परसों इस्लामाबाद आ रहा है ना अमरीकी विदेश मंत्री माइक पंपू, अब्दुल्ला उसका नाम पंपू नहीं माइक पोम्पियो है, जो भी है पंपू चंपू, अपने इमरान खान में अगर ज़रा भी गैरत है तो इस पंपू को मुंह पे कह दे कि जा अपने $30 करोड़ की बत्ती बना के जेब में डाल ले, बना ले इस पैसे से एक और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, नहीं चाहिए हमें ये पैसा। अबे कंगली सुपर पावर, एक गरीब देश की मजदूरी खाता है, तेरे पेट में मरोड़ उठेगा, तू कहीं का ना रहेगा। अब्दुल्ला, तुम ऐसे गुस्सा दिखा रहे हो जैसे अमेरिका ने तुम्हारे पैसे दबा लिए हों, तुम तो ऐसे ना थे। भाई साहब बुरा ना मानिएगा, खुदा ना करे आपके बेटे का अमेरिका का वीज़ा कभी रिजेक्ट हो जाए, तब पूछूंगा कि अब्दुल्ला पनवाड़ी को इतना गुस्सा क्यों आता है।
वसत साहब की पाकिस्तान डायरी पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और अब बात पाकिस्तान के कराची शहर के उस रेस्टोरेंट की जहां मिलता है गुजरात का स्वाद। सुनिए बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट।
राजधानी डिलाइट्स पाकिस्तान का पहला और अकेला गुजराती रेस्टोरेंट है। कराची के बीच मौजूद ये रेस्टोरेंट आसपास के दफ्तरों में काम करने वाले सैकड़ों लोगों के लंच की एक फेवरेट जगह है। यहाँ दीवारों पर लगी तस्वीरें, पगड़ी और खास तरह के कपड़े पहने वेटर्स के बीच पहुँच लगता है मानो आप गुजरात के किसी रेस्टोरेंट में हैं।
अब्दुल कादिर बुलो यहाँ की थाली का लुत्फ लेने आए हैं।
आज इस जो रेस्टोरेंट में आया, मेरे लिए सारी चीज़ें सरप्राइज थी जो उन्होंने रूटीन में की और मैंने देखी। और इतना हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाना एक थीम है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स भी होता है, बंदा सुकून भी होता है। ये तीनों चीज़ें यहाँ मौजूद हैं।
और केवल माहौल ही नहीं, मेन्यू भी गुजराती है। खुमन ढोकरा, चट्टा, भेलपूरी, दही पूरी, लौकी का हलवा, मीठी कड्डी, पापड़, पूरी और अचार, राजधानी डिलाइट्स में सब मिलता है।
आज जिंदगी में पहली बार मैंने गुजराती खाना खाया। एंड लेट मी टेल यू, दिस रवा ढोकला इज माइंड ब्लोइंग।
रेस्टोरेंट के मालिक मोहम्मद गंगानी का ताल्लुक कच्छ से है, जहां से वो 1971 में पाकिस्तान आ गए, मगर गुजरात उनके दिल से कभी दूर नहीं हुआ। वैसे अपने खाने को यहां के स्वाद में ढालने के लिए उन्होंने कुछ बदलाव भी किया।
जे प्रमाणे गुजराती मारी लैंग्वेज जे छे, अने आखावा,
मैं गुजराती हूं और मुझे गुजराती खाने से बहुत लगाव है। यहां हम गुजराती खाना बनाते हैं और लोगों को ये पसंद है, हम उस बात का पूरा ख्याल रखते हैं।
हमारी कोशिश से हमें कोशिश करता रहे।
ये जगह उन लोगों को भी पसंद है जो कराची में मिलने वाले खाने के बीच कुछ अलग स्वाद चखना चाहते हैं। यहाँ खाना तकरीबन शाकाहारी है और थाली में परोसा जाता है।
गुजराती खाने की शौकीन सलीमा अब्बास कहती हैं,
कराची पाकिस्तानो कल्चर सूचे के तुम्हारी प्लेट हो ही नहीं है ना, तुम्हें
कराची का कल्चर है कि आप प्लेट लेकर खाने के पास जाते हैं, पर यहाँ खाना आपको परोसा जाता है, आप स्पेशल फील करते हैं, आपका ख्याल रखा जाता है और इससे खाना वेस्ट भी नहीं होता।
तो वो ऐसी है कि तुम्हें वेस्ट नो करो ना खावानो, अटलू जो तुमने खाओ छे।
कराची में गुजरात से आए लोगों की अच्छी खासी आबादी रहती है। अच्छे खाने का स्वाद सरहदों की बंदिशों को नहीं मानता। शुमाइला जाफरी, बीबीसी कराची।
और अब एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि एशिया के सबसे अमीर लोग कौन हैं? ये खबर पढ़नी है तो आइए bbchindi.com पर। और अब बात खेलों की, सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम पर वही कहावत फिर लागू हुई घर के शेर बाहर ढेर और कल इंग्लैंड ने साउथम्पटन में खेले गए चौथे टेस्ट मैच को चौथे ही दिन 60 रन से अपने नाम किया। भारत के सामने जीत के लिए 245 रनों का लक्ष्य था लेकिन उसकी पूरी पारी केवल 184 रन पर ढेर हो गई। कप्तान विराट कोहली ने 58, अजिंक्य रहाणे ने 51 और आर अश्विन ने 25 रन बनाए लेकिन बाकी बल्लेबाज आया राम गया राम साबित हुए। इंग्लैंड के मोइन अली ने 71 रन देकर 4, जेम्स एंडरसन ने 33 रन देकर 2 और बेन स्टोक्स ने भी 34 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही इंग्लैंड ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त भी हासिल कर ली है। और अब समीक्षा। एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा पदक मिलने से खुशी मनाएं या फिर अपने से आगे 7 देशों से सबक लें। कल 2022 में चीन के शहर हांगझोउ में मिलने के वादे के साथ ही इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहर में हुए 18वें एशियाई खेल समाप्त हो गए। भारतीय एथलीटों ने भी अपना दमखम दिखाते हुए 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक सहित 69 पदक जीते। भारत पदक तालिका में 8वें पायदान पर रहा जबकि चीन 289 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। जापान दूसरे, दक्षिण कोरिया तीसरे, बेस्वान इंडोनेशिया चौथे, उज्बेकिस्तान 5वें, ईरान 6ठे और चीन ताइपे 7वें स्थान पर रहा। हालांकि भारत ने इस बार एशियाई खेलों के इतिहास में सबसे ज्यादा पदक जीते। इससे पहले उसने चीन में साल 2010 में 65 पदक जीते थे। स्वर्ण पदक जीतने के मामले में भारत ने अपनी ही मेजबानी में साल 1951 में हुए पहले एशियाई खेलों की बराबरी करते हुए 15 स्वर्ण पदक जीते। आखिरकार साल 1951 के बाद 15 स्वर्ण पदक तक पहुंचने में 67 साल भले ही लग गए लेकिन ये आने वाले सुनहरे भविष्य की आहट है। इसका पूरा श्रेय एथलीटों को जाता है जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में 7 स्वर्ण, 10 रजत और 2 कांस्य पदक सहित 19 पदक जीते। निशानेबाजों ने भी 9 पदक जीत कर सहारा दिया लेकिन पुरुष हॉकी में खिताब हाथ से जाता रहा और इसके साथ ही स्वर्ण पदक जीत कर सीधे ओलंपिक्स में जगह बनाने का सपना भी टूट गया। महिला हॉकी ने जरूर रजत पदक जीता और कबड्डी में तो भारत की बादशाहत ही ईरान ने समाप्त कर दी। पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम फाइनल में ईरान से हारी। इस डबल झटके से गुस्साए भारत के पूर्व कप्तान रणधीर सिंह बोले,
मैंने हर प्लेयर को ये कहा था अति आत्मविश्वास आपको ले डूबेगा, 1,35,00,000 लोगों का दिल दुखा दिया।
इसके अलावा तीरंदाजी में दीपिका कुमारी, कुश्ती में सुशील कुमार, वेट लिफ्टर, बैडमिंटन में पुरुष खिलाड़ी, महिला मुक्केबाज, तैराक, जिमनास्ट दीपा कर्माकर, बॉलिंग, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, कराटे, फेंसिंग और इसके अलावा कुछ अन्य खेलों के खिलाड़ी भी कुछ खास नहीं कर सके। खेल पत्रकार अयास विमन कहते हैं,
कबड्डी 27 साल तक कोई इंडिया को हरा नहीं सका था। एशियन लेवल पे मात खानी पड़ी दोनों ही सेक्शन में, मेन एंड वुमेन। वैसा ही रेसलिंग में भी कुछ हुआ है, साक्षी मलिक ने मेडल नहीं मिला हालांकि ओलंपिक मेडलिस्ट है। और बैडमिंटन में मेन सेक्शन में बड़े खिलाड़ी जो हैं किदंबी श्रीकांत और प्रणव दोनों ही जल्द हार गए। आर्चरी में भी अगर आप देख लें जो उम्मीद थी उतने मेडल नहीं आए।
बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने कांस्य और पीवी सिंधु ने पहली बार व्यक्तिगत रूप से रजत पदक जीता। पीवी सिंधु कहती हैं,
I played the finals in this tournament and I'm very happy about it. But it feels really nice and it's a proud moment for the country definitely that two Indians are on the podium.
इस बार नए खेल ब्रिज के अलावा रोइंग, वुशू, सेपक टाकरा, कुराश और घुड़सवारी में मिले पदकों ने हौसला बढ़ाया लेकिन अब कामयाबी पर इतराया जाए या फिर पदक तालिका में सीढ़ी लगाकर चीन को देखा जाए जिसने पहली बार 1974 में एशियाई खेलों में भाग लेकर 106 पदक जीते और उसके बाद से उसका दबदबा बढ़ता ही गया। अब कामयाबी का जश्न जरूर मनाए लेकिन संभल कर आगे भी देखें, हॉकी और कबड्डी की हार भुलाने में वक्त लगेगा। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही
और चलते चलते मुख्य समाचार दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। लीबिया में पुलिस का कहना है कि राजधानी त्रिपोली में विद्रोही गुटों की हिंसा के बीच लगभग 400 कैदी जेल से फरार हो गए हैं। अमेरिका में डेमोक्रेट सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नामित ब्रेट कैवनॉक के दस्तावेजों को जारी नहीं करने पर व्हाइट हाउस की आलोचना की है। ब्राजील के शहर रियो दे जनेरियो के एक म्यूजियम में भीषण आग लगी है। ब्रेक्सिट पर यूरोपियन यूनियन के मुख्य वार्ताकार माइकल बर्नियर ने कहा है कि उन्हें ब्रितानी सरकार के उस प्रस्ताव पर एतराज है जिसमें ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय यूनियन के साथ भविष्य के रिश्तों की योजनाओं के बारे में बताया गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे दीपक जसरोटिया। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।